आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अधिकतर देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने के ऐलान से उपजी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत और यूरोपियन यूनियन ने आपसी मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हो रही वार्ता को इस साल के अंत तक निष्कर्ष पर पहुंचाने का निर्णय लिया है। यह समझौता सन 2021 में वार्ता के दोबारा शुरू होने के बाद से अभी तक लंबित है। भारत और यूरोपियन कमीशन द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के बाद कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने शुक्रवार को मुक्त व्यापार समझौते पर खास जोर देते हुए इसे वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बेहद निर्णायक कदम बताया।
Now we have tasked our teams to build on this momentum. And finalize our free trade agreement before the end of the year. We're expecting a lot of our trade negotiators. We told them they should surprise us. Now more than ever, the geopolitical content asks for decisive action. At the same time, we must take our Trade and Technology Council to the next level and connect research, innovation and market uptake. This allows us to tackle important economic challenges together and to build robust and diverse supply chains, such as, for example, in semiconductors, a very important topic we have been working intensively on.
भारत EU Trade and Technology Council के बीच हुई बैठक में कई और समझौतों पर भी वार्ता हुई, जिसके दौरान तीन वर्किंग ग्रुप्स की बैठकों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। यह वर्किंग ग्रुप्स यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, एग्री फूड और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में अपने विचार रखे।
हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को FTA को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा प्रस्तावित इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष दोनों ने ही एक नए और बेहतर भविष्य की उम्मीद बताया।
मुझे विश्वास है कि IMET ग्लोबल कॉमर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने वाला इंजन साबित होगा।
It's amazing as a project. This can be a modern golden road directly connecting India, the Arabian Gulf and Europe. It's fascinating. It has a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster.
भारत के सुदूर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में कई महीनों से फैली हिंसा और अराजकता का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करें और अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सुरक्षा बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला तथा मणिपुर सरकार, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस बीच मणिपुर के राज्यपाल ने राज्य के पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के लोगों के लिए लूटे गए और अवैध हथियार और गोला बारूद को स्वेच्छा से जमा कराने या आत्मसमर्पण करने की समय सीमा 6 मार्च 2025 की शाम 4 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। श्री भल्ला ने कहा कि इस अवधि के दौरान स्वेच्छा से हथियार सौंपने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जबकि समय सीमा के बाद किसी भी व्यक्ति के पास अवैध या लूटे हथियार पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मणिपुर के लोगों ने राज्य में जारी जातीय हिंसा के खिलाफ राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हुए मणिपुर के कुकी क्षेत्रों के लिए विधानसभा सहित एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की है। आपको ज्ञात होगा कि हिंसा को काबू करने में असफल रहे एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद मणिपुर में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। हरियाणा के रोहतक जिले में विपक्षी दल कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा किया है। सुश्री नरवाल का शव हरियाणा पुलिस को सांपला इलाके की एक सड़क के किनारे बंद अटैची में मिला। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा द्वारा शव की पहचान हिमानी नरवाल के रूप में करने से पहले पुलिस इसे लावारिस लाश समझकर जांच में जुटी थी। इस सनसनीखेज खबर को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो जाने का आरोप लगाया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुडा ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बर्बर हत्या को बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाली घटना बताते हुए इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बदनुमा धब्बा बताया और हत्याकांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारत, खासकर उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत में मौसम अजीब रंग दिखा रहा है। लगता है कि सर्दी के मौसम में ही देश के ज्यादातर भागों में गर्मी का मौसम आ गया हो। फरवरी के महीने में गर्मी ने पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि सन 1901 में जब से देश में मौसम का रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई है, 2025 का फरवरी माह पिछले सभी फरवरी महीनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे गर्म दर्ज किया गया है। बीता जनवरी 2025 का महीना भी 1901 के बाद तीसरा सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मार्च से मई तक सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है, जिस दौरान लू भी चल सकती है, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। और अब पेश हैं खेल जगत के समाचार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज के 12वें मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा भारत ने सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर लिया है, जहां भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। 6.4 ओवर में ही भारत ने 30 रन पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली के 3 कीमती विकेट खो दिए, लेकिन उसके बाद चौथे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच 98 रनों की साझेदारी हुई। 5वें विकेट के लिए भी अय्यर और केएल राहुल के बीच 44 रनों की साझेदारी हुई। अय्यर ने 98 गेंदों में 89, पटेल ने 61 गेंदों में 42 और हार्दिक पांड्या ने 45 गेंदों में 45 रनों का योगदान दिया, लेकिन भारतीय टीम इसके बावजूद 50 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 228 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड की शुरुआत भारत से बेहतर रही, लेकिन खेल के मध्य में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने न केवल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा बल्कि समय समय पर विकेट भी निकालते रहे, जिसके कारण रन रेट भी लगातार बढ़ता रहा। वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने 2, पटेल, रविन्द्र जडेजा और पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियमसन 120 गेंदों में 81 और मिचेल सॉन्टनर 31 गेंदों में 28 रन बना कुछ प्रतिरोध दिखा पाए। न्यूजीलैंड की टीम 45.3 ओवर में केवल 205 रन ही बना पाई। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।